તારીખ 25/5/1991 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 706 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 326
दोष का निवेदन किया है कि मेरे परिणाम में ऐसे ऐसे दोष होते हैं, कृपया मेरा दोष जैसे कैसे भी मिटे, ऐसा कोई उपदेश, ऐसा कोई मार्गदर्शन की अपेक्षा रख करके कृपालु देव के प्रति चिट्ठी लिखते थे। ऐसा प्राय दिखने में आया है। ये भी लिमड़ी के केशवलाल भाई करते हैं, उसने भी ऐसा ही किया। तो उनको क्रम से उत्तर देते हैं कि वृत्ति आदि का संयम अभिमान पूर्वक होता हो तो भी करना योग्य है। विशेषता इतनी है कि उस अभिमान के लिए निरंतर खेद रखना। मुमुक्षु ने ऐसा लिखा है कि मैं कुछ भी वृत्ति को रोकता हूँ या मैं संयमित करता हूँ तो उसका अभिमान मुझे हो जाता है कि मैंने ऐसा किया। तो ऐसा जो मुझे अभिमान होता है, इसके लिए मैं क्या करूं? वृत्ति का रोकना तो आसान है, मैं कर सकता हूं, होता भी है, लेकिन साथ ही साथ एक दूसरा दुर्गुण होता है कि मुझे अभिमान हो जाता है। इसके लिए मैं क्या करूं? ऐसा कोई मार्गदर्शन की अपेक्षा रख करके पूछा तो कहते हैं कि भले ही अभिमान हो, संयम में तो रहना अच्छा ही है। अब बात रही अभिमान टालने की, तो इसके लिए जो अभिमान होता है उसके लिए निरंतर खेद रखना। जिसको अपने परिणाम का अवलोकन होता है उसको तो अपना दोष नजर आता ही है, नहीं आवे ऐसा नहीं बने। और जिसको अपना दोष नजर आता है उसको अपना दोष के लिए खेद हुए बिना भी रहने वाला नहीं है, वो साथ ही साथ बनता ही है। और यही दोष टलने की एक प्रक्रिया है। दोष का निषेध ये दोष टलने की एक प्रक्रिया है। मुमुक्षु की भूमिका से लेकर के जहाँ तक साधक की भूमिका में भी दोष का सद्भाव रहता है वहाँ तक ये प्रक्रिया चालू रहती है। मोक्ष मार्गी धर्मात्मा को भी वेद ज्ञान में क्या होता है? वेद ज्ञान विधि निषेध रूप है। विधि निषेध रूप मैंने अपने स्वरूप का आदर होना, ये विधि है। और दोष का निषेध होना, ये निषेध है। स्वपर प्रकाशक ज्ञान में अपना स्वरूप भी जानने में आता है, दोष भी जानने में आता है। दोष का निषेध होता है और स्वरूप का आदर होता है। इस प्रकार का एक साथ दोनों पहलुओं में जो परिणमन है उसको ही अनेकांतिक परिणमन कहने में आता है। उसको बताने वाले वाणी को अनेकांतवाद या अनेकांतिक वाणी कहने में, अनेकांतिक वचन कहने में आता है। वास्तव में तो परिणमन अनेकांतिक है, अस्थि रूप भी है, नास्ति रूप भी है, दोनों एक साथ होता है। और इसका प्रारंभ हो गया मुमुक्षु की भूमिका से। मुमुक्षु ने भले ही अपना आत्मा का अनुभव नहीं हुआ हो, आत्मा प्रत्यक्ष नहीं हो, लेकिन दोष तो है, तो दोष नहीं चाहिए, यहां से तो मुमुक्षुता उत्पन्न हुई है। या बिल्कुल दोष मुझे नहीं चाहिए, थोड़ा भी नहीं चाहिए। गंदगी को कौन चाहेगा, थोड़ी भी हो तो। ऐसा नहीं होता कि थोड़ी भले ही रह जाए, ऐसा कहीं भी कोई चाहते नहीं। ये मलिन भाव है, मलिनता है, इसलिए इस मलिनता को बिल्कुल पूर्ण रूपेण जो नहीं चाहता वो ज़्यादा दोष का तो निषेध करेगा, क्योंकि मुमुक्षु की भूमिका में तो बहुत दोष होता है, अनेक प्रकार के होते हैं, बार बार होते हैं, तो उसका निषेध आया बिना नहीं है। वैसा हो तो क्रमशः वृत्ति आदि का संयम हो और तत्संबंधी अभिमान भी न्यून होता जाए, क्रमशः न्यून होता जाए, भले एक साथ नहीं मिटे, लेकिन निषेध चालू रहेगा तो क्रमशः उसकी न्यूनता, न्यूनता मैंने घटता जाएगा, कम होता जाएगा, ऐसा बनेगा। दूसरा, अनेक स्थलों पर विचारवान पुरुषों ने ऐसा कहा है कि ज्ञान होने पर काम क्रोध तृष्णा आदि भाव निर्मूल हो जाते हैं, यह सत्य है। विचारवान पुरुष को, महापुरुष को, ज्ञानी पुरुष को अनेक स्थलों पर ग्रंथ ग्रंथों में ये बात कही है कि जो सच्चा ज्ञान होवे तो ये जो प्रकृतिगत दोष है काम क्रोध तृष्णा आदि, उसका नाश हो जाता है, निर्मूल होवे ही हो, ज्ञान होवे तो। और ज्ञान होने के दिशा में मुमुक्षु जीव प्रयास करे तो उसको भी मालूम पड़ता है कि मेरी जो प्रकृति थी प्रकृति में इतना फर्क पड़ा है, क्योंकि पहला प्रहार प्रकृति पर होता है, इस लाइन में आने वाले को पहला, सबसे पहला जो कोई फर्क पड़ता है वो अपनी प्रकृति के दोष पर पड़ता है, और उसको पता भी चलता है कि मेरी प्रकृति जितनी तीव्र रस से प्रवर्तित होती थी उतनी अब नहीं होती है। फिर भी उसमें संतोष नहीं है, संतोष लेने का सवाल भी नहीं है, लेकिन ये बात समझ में उसको स्वयं को भी आती है, तब उसको ऐसा लगता है कि मेरा इस लाइन में जो गमन होता है या विकास होता है वो ठीक हो रहा है, या ऐसे ही मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मैं सही रास्ते पे हूँ, इसकी प्रतीति उसको आता है, विश्वास आता है। अगर प्रकृति का दोष में फर्क पड़ता है तो, और ज्ञान होने पर तो उसका निर्मूलपना यानी नाश हो जाते हैं, यह सत्य है। तथापि उन वचनों का ऐसा परमार्थ नहीं है कि ज्ञान होने से पहले वे मंद न पड़े या कम न हो, ऐसा नहीं कभी लेना कि ज्ञानी को ये निर्मूल होता है, हम तो ज्ञानी हुए नहीं, हमको तो ज्ञान प्रकट हुआ नहीं है, इसलिए हमको तो दोष होवे ही होवे, हमारी तो प्रकृति प्रगत तो दोष रहेगा, क्या करेगा, क्या बचाव करता है, भाई ये तो मेरी प्रकृति है, इसके लिए मैं क्या करूँ, मेरी तो प्रकृति ऐसी है, इसके लिए मैं क्या करूँ, ये बात मुमुक्षु को नहीं करना चाहिए। ऐसा होना चाहिए हमेशा कि प्रकृति कैसी भी हो, इसका निर्मूल करने के लिए जब मैं कदम उठाता हूँ तो मुमुक्षु की भूमिका में ज्ञान होने से पहले भी ये मंद पड़नी चाहिए या इसमें कमी आनी चाहिए, अवश्य आनी चाहिए, कितना कम से कम होना चाहिए। मुझे ज्ञान नहीं हुआ है इसलिए मेरी प्रकृति तो नहीं गई, मैं क्या करूं, ये बात ठीक नहीं है। इसमें तो निषेध तो चला गया, लेकिन जो भी मुझे होता है वो ठीक हो रहा है, होना चाहिए ऐसा हो रहा है, इसका आधार, अभिप्राय का आधार मिल जाएगा, दोष को करने का अभिप्राय को आधार मिल जाएगा, पर ये दोष कभी मिटने वाला नहीं है, मंद भी होने वाला नहीं है। थायत, पहलो फेरफार था, जिसको मुमुक्षुता का प्रारंभ हुआ हो उसकी प्रकृति पर पहला प्रहार हो ही जाएगा। ये चीज ही ऐसी है, इसलिए तो यहाँ से चालू किया है कि मुझे परिपूर्ण शुद्धि चाहिए, तनिक भी एक कण भी दोष का मुझे नहीं चाहिए। ये कलंक है मेरे पर, और ये कलंक थोड़ा भी मुझे पर हो ये मैं नहीं चाहता। यहाँ से तो प्रारंभ है, यहाँ से तो शुरुआत है इस मुमुक्षुता की। तो मुमुक्षुत्व की शुरुआत इस प्रकार से हुए, उसको तो फर्क पड़े ही पड़े, नहीं पड़े ऐसा नहीं बने। अगर नहीं पड़ा हो तो ऐसा समझना चाहिए कि इस लाइन में हमारा प्रवेश नहीं हुआ है। बाह्य दृष्टि से भले ही सत्संग होवे, वांचन करे, वांचन में बैठे श्रवण करे, कुछ भी हो, लेकिन वास्तव में प्रवेश नहीं हुआ है ऐसा समझना चाहिए। और फर्क पड़ा तो समझना चाहिए कि चलो ये फर्क पड़ा है, अभी जो फायदा हुआ है बस यही काम आगे बढ़ाना चाहिए हमें, क्योंकि इससे हमें फायदा हुआ है। बस ये भी सारी बात। यद्यपि उनका समूल छेदन तो ज्ञान से होता है, आत्मज्ञान से या सम्यक ज्ञान से इसका समूल मूल सहित छेदन छेदन होता है, परंतु जब तक कषाय आदि की मंदता या न्यूनता न हो तब तक ज्ञान प्राय उत्पन्न ही नहीं होता। ये पूर्व भूमिका है, ज्ञान होना और कषाय का अभाव होना ये तो फल है, लेकिन फल कब आया कि कुछ बीज बोया था उसका फल आया। बीज बोया था इसका मतलब क्या कि भूमिका कोई अच्छी थी, जमीन अच्छी थी, उसमें बीज बोया जब उसका फल आया है। तो ये जो पूर्व की प्रक्रिया है उसमें प्रवेश किया बिना फल की अपेक्षा रखी जाए तो भी ये उचित नहीं है। ये पूर्व भूमिका की बात। गुरुदेव श्री ऐसे कहते थे कि राग ऐसे नहीं छूटता, पहले राग की रुचि छूटती है। वो तो सिद्धांतिक बात करते थे। कृपालु देव की सिद्धांतिक बात करने की पद्धति कम है, सिद्धांत आ जाता है इसमें, भूमिका का सिद्धांत आ तो जाता है, लेकिन वो खोलते नहीं थे उतना, क्योंकि मुमुक्षु इतने सिद्धांतिक उपदेश के लिए तैयार नहीं थे। गुरुदेव तो सिद्धांतिक बात करते थे खोल करके। देखिए तुमको राग मिटाना है, कहाँ मिटाना है, राग ऐसे नहीं मिटेगा, पहले राग की रुचि मिट जाएगी। तो राग तेरी रुचि कहाँ काम करती है वो पहले देखना चाहिए, पहले उसको उस पर ध्यान होना चाहिए कि रुचि कहाँ है, क्योंकि रुचि और रस अविनाभावी होने से पहले रस मंद पड़ता है या रुचि मंद पड़ती है, फिर राग का अभाव होता है। भले ही अनंतानुबंधी का हो फिर प्रत्यक्षानुबंधी का हो, लेकिन अभाव का जो मार्ग है मोक्ष मार्ग में राग की मंदता का मार्ग नहीं है, राग के अभाव का मार्ग है। ये तो वितरागता तो राग के अभाव में उत्पन्न होती है, वितराग मार्ग में राग का अभाव होता है, उसके पहले राग का रस टूटता है या राग की रुचि मिटती है। और शुद्धात्मा की या निर्दोषता की रुचि उत्पन्न होती है, पवित्रता की रुचि उत्पन्न होती है। यही रुचि में बिल्कुल उल्टी सुलटी परिस्थिति जब पैदा होती है तब राग का अभाव होने का क्रम चालू होता है, इसके पहले राग का अभाव नहीं हो सकता। ये कहा कि परंतु जब तक कषाय आदि की मंदता या न्यूनता न हो तब तक ज्ञान प्राय उत्पन्न ही नहीं होता। तो कषाय की मंदता दो प्रकार से होती है, रुचि कषाय की रहवे और कषाय की मंदता होवे, और रुचि कषाय की नहीं रहवे, आत्मा की रुचि होवे और कषाय की मंदता होवे। तो इसलिए गुरुदेव इस बात को खोल करके बताते थे कि संप्रदाय में जैसे लोग धार्मिक क्रिया करते वक्त कषाय की मंदता करते हैं ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, रुचि और रस मंद होना चाहिए, इसमें फर्क पड़ना चाहिए जब भी कषाय की मंदता सही रूप में है, वरना कषाय की मंदता सही रूप में नहीं है। ज्ञान प्राप्त होने में विचार मुख्य साधन है। अब देखिए कि ज्ञान प्राप्ति कोई दूसरी क्रिया से नहीं होती, पूजा भक्ति से नहीं होती, दया दान से नहीं होती, ज्ञान प्राप्ति विचार से होती है। अभी दूसरे से और जगह से उठा दिया, ज्ञान प्राप्ति कैसे होती है? कि ज्ञान प्राप्त होने में विचार मुख्य साधन है, और विचार में भी विचार करते हैं तो किस हालत में विचार करना होना चाहिए? कि उस विचार के वैराग्य तथा उपशम, ये दो मुख्य आधार है। दोनों का अकाउंट में स्वयं ने अर्थ लिखा है कि भोग के प्रति अनासक्ति, यानी तीव्र रस से खाना पीना जो भी पंचेंद्रिय का विषय का उदय होता है उसमें तीव्र रस से प्रवर्तित नहीं होना, उसको मुमुक्षु की भूमिका का वैराग्य कहते हैं। वैराग्य का बहुत व्यापक अर्थ है। मुनिराज को भी जो परिस्थिति है उसको वैराग्य वाली परिस्थिति कहते हैं। पंचम गुण स्थान वाले को भी जितना त्याग होता है उसका उसको वैराग्य है ऐसा बोला जाता है। और ज्ञानी तो वैराग्य होते ही हैं और मुमुक्षु भी वैराग्य होते हैं। ये चार पद में जो वैराग्य है वो चारों की परिभाषा भी अलग अलग है, चारों का स्वरूप भी अलग अलग है। जब ये मुमुक्षु की भूमिका की चर्चा चल रही है तो मुमुक्षु के योग्य वैराग्य कौन सा है, ये बात हमें अच्छी तरह समझनी चाहिए। कि मुमुक्षु की भूमिका का वैराग्य वो है कि अपना आत्म कार्य करने की तीव्र भावना और जिज्ञासा के वश, ऐसे वैराग्य फालतू नहीं, अपना स्वरूप प्राप्ति इसकी भावना और स्वरूप का पहचान नहीं हुआ इसकी जिज्ञासा के वशात, और सब हमारे उदय भावों का रस ठंडा हो जावे या फिक्का हो जावे, उसी को मुमुक्षु की भूमिका का वैराग्य कहने में आता है। इस प्रकार का वैराग्य हो। और उपशम मैंने कषाय आदि की बहुत ही मंदता, उनके प्रति विशेष खेद, यानी जो भी अपने परिणाम में दोष होता हो उसके प्रति खेद होवे, और खेद के कारण जो कषाय मंद होवे, खेद के वश ये कषाय मंद होवे, तो उस प्रकार के जो कषाय की मंदता उसको मुमुक्षु की भूमिका का उपशम कहने में आता है। वास्तव में उपशम तो मोक्ष मार्ग के प्रारंभ से ही होता है, इसके पहले नहीं होता है, इसलिए मोक्ष मार्ग को उपशम का विशेषण लागू पड़ता है। क्योंकि आत्मा की शांति हुई, जैसे तुझे माता जी को हम कहते हैं कि उपशम मूर्ति, ऐसे कहते थे, शांतता उनके मन वचन का या कहीं योग में शांतता काफी प्रदर्शित होती थी, तो उपशम मूर्ति ऐसा नाम दिया। तो वहाँ मोक्ष मार्ग का उपशम है, यहाँ मुमुक्षु की भूमिका का उपशम है। कि मुमुक्षु भी शांत होता है पर उसको अपने होने वाले जो चलते हैं उसी कषाय पर उसका निषेध आता है, और निषेध के वशात उसको कषाय की मंदता सहज हो जाती है। इस प्रकार के दो मुख्य आधार भूत परिणाम तत्वज्ञान के विचार में होते हैं। तत्वज्ञान के विचार तो हम बहुत करें, घंटों तक स्वाध्याय करें, चर्चा करें, और फिर खाने पीने में हमारे रस के परिणाम ऐसे हो जाए कि जैसे घोड़े सवारी हो गई और घोड़ा तेजी से चलने लगा, उड़ने लगा, ऐसे कषाय रस में उड़ते रहें और तत्वज्ञान का अभ्यास भी करते रहें, ये दो बात का मेल होने वाला नहीं है। ये विचार हमें काम में नहीं आएगा। आजकल हमारे यहाँ ये बहुत समाज के करीब करीब मुमुक्षुओं की व्यापक फरियाद है। फरियाद कहते हैं क्या कहते हैं, शिकायत है, फरियाद भी कहते हैं, शिकायत भी कहते हैं, शिकायत उर्दू जबान में। क्या करे, बात तो सब समझते हैं लेकिन जब उदय में जुड़ते हैं तो वो तो कोई याद ही नहीं आता, स्मरण भी नहीं होता, बाद में विचार आता है, खा लेते हैं, पी लेते हैं, काम कर लेते हैं, कोई इस वक्त तो जैसे कोई सुना ही नहीं, समझा ही नहीं, कोई तत्व ज्ञान की उपस्थिति, ज्ञान की उपस्थिति हमारे में जैसे नहीं हो, जैसे दूसरे संसारी करते हैं वैसे ही मुमुक्षु करते हैं, कोई फर्क नहीं। बाद में थोड़ा विचार करते हैं तो हाँ हमने पढ़ा था, हमने सुना था, ऐसा है, वैसा है, कैसा है, तो थोड़ा विचार बाद में करता है। ऐसा क्यों हुआ कि वैराग्य और उपशम के साथ हमने विचार नहीं किया? कृपालु देव की कृपा है इधर, हमने विचार तो किया तत्व का, कषाय का नाश कैसा हो, मोक्ष मार्ग कैसे हो, अस्ति नास्ति सभी पढ़ के से विचार किया, धारणा भी होगी, लेकिन धारणा का परिणमन क्यों नहीं? कि धारणा सही अवस्था में हमने नहीं की थी। जिस हालत में हमने तत्व ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए उसी हालत में हमने नहीं किया, तो फिर इसका कोई फल भी आने वाला नहीं है। तो प्रारंभ से ही वही होता है, यहाँ से ही चालू काम होता है, और ये तो होवे नहीं और तत्व ज्ञान का अभ्यास कर लेवे, बुद्धि होवे इसमें, बुद्धि का प्रयोग हो जावे, बुद्धि की शक्ति का प्रयोग चल जावे, तो इसलिए कोई काम नहीं हो सकता, होने वाला है ही नहीं, कतई नहीं होगा, ये तो सैद्धांतिक बात है। इसलिए आधार शब्द लिया है, ये तो पहले चालू होता है फिर भी उसके आधार से विचार चलता है, ऐसा कहते हैं। इसके आधार से विचार नहीं चले और वैसे सीधा विचार चले तो ये विचार कोई सफलता लाने वाला नहीं है। ऐसा जानकर उसका निरंतर लक्ष्य रखकर, ऐसा जानकर और उसका लक्ष्य रहना चाहिए। लक्ष्य का मतलब ये है कि ये स्मृति विस्मृति का विषय नहीं है, कि विस्मृत भी हो जाए फिर हम स्मरण करें तब पता चले, अरे हमने तो ऐसा सुना था और ऐसा हो गया, ऐसा नहीं। लक्ष्य तो निरंतर रहता है, ये लक्ष्य ही एक न्याय से परिणति है, ये लक्ष्य है वो एक न्याय से ज्ञान की परिणति है। तो ये इतना तीव्र रस को उत्पन्न ही नहीं करने देती, जैसे एक चौकीदार को बिठा दिया कि तुमको ये दरवाजे पर बैठना है, देखिए यहाँ कोई कुत्ता नहीं आ जावे, कोई दूसरे पशु गाय वगैरह बकरे वगैरह घर में नहीं चले आए, तो बैठा बैठा है तो भी वो आने वाले नहीं है, यहाँ से जो चलेंगे वो देख लेगा कि चौकीदार बैठा है, वो अंदर प्रवेश ही नहीं करेगा। ऐसा लक्ष्य है एक चौकीदार हो जाता है, ज्ञान है वो एक चौकीदार है परिणाम पर। तो इतने तीव्र कषाय को उठने ही नहीं देते, प्रवेश ही नहीं करने देते, सहज ही मंदरस से प्रवृत्ति होने की एक परिस्थिति खड़ी हो जाती है, पैदा हो जाती है, इसी को मुमुक्षुता कहते हैं। तो ऐसा लक्ष्य रहना चाहिए, ये बात साथ में, ऐसा जानकर ऐसा समझकर उसका निरंतर लक्ष्य रहवे, ऐसी कोई स्थिति पैदा हो जावे और वैसी परिणति करना योग्य है। देखिए परिणति शब्द यहाँ प्रयोग किया है, ऐसी परिणति करना योग्य है। ये तो पूज्य बहन श्री बहुत चर्चा में कहती थी कि मुमुक्षु को तो परिणति हो जाना चाहिए, और वचनामृत में भी वो बात लिया है कि वैराग और भक्ति उपशम आदि की तो सहज स्थिति हो जानी चाहिए, सहज कर जा इसका जीवन में ये बात सहज हो जानी चाहिए। इसका मतलब क्या है? ऐसी परिणति हो जानी चाहिए। अब विचार से सत्पुरुष के वचन का ग्रहण होता है या सत्पुरुष के वचन से विचार सही रूप में उद्भव होता है, उसका कर्म लेते हैं कि आत्मविचार कहो, आत्महित का विचार कहो, कैसे चलता है इसका कौन साधन है, ये कहते हैं कि सत्पुरुष के वचन के यथार्थ ग्रहण के बिना प्राय विचार का उद्भव नहीं होता। देखिए बहुत सुंदर बात किया है, सत्पुरुष के वचन के ग्रहण के बिना ऐसा नहीं लिया है, यथार्थ ग्रहण के बिना, यथार्थ रूप में ग्रहण करे। यथार्थता क्या चीज है कि ग्रहण करने वाले को अपना आत्महित ही एक लक्ष्य में हो, केंद्र स्थान में हो, ग्रहण करने का केंद्र बिंदु एक आत्महित ही हो, तब ही ये सत्पुरुष के वचन यथार्थ रूप में ग्रहण होते हैं और इस पर जो विशेष विचार चल सकता है तो उसी तरह से चल सकता है। बाकी तो चर्चाएं बहुत होगी, धारणा भी बहुत होगी और चर्चा भी बहुत होगी, धारणा भी बहुत होगी, विद्वत्ता भी शायद आ जाएगी, पंडिताई भी आ जाएगी, लेकिन यथार्थ ग्रहण नहीं होगा। ये यथार्थता है, ये मुमुक्षु की भूमिका का मुख्य मुद्दा है, मुमुक्षु की भूमिका का मुख्य मुद्दा है कि जो भी करे, थोड़ा भी करे, ज्यादा भी करे, जितना भी करे, यथार्थ होना चाहिए। बस तो यथार्थ होना चाहिए वो कैसे हो, होना चाहिए वो तो ठीक है, कैसा कैसे हो कि जब आत्महित का ही लक्ष्य रहता है कि मैं तो इस लाइन में आया मेरे आत्महित के कारण से आया, दूसरा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, न किसी से संबंध बढ़ाना का उद्देश्य है, न कोई ख्याति बढ़ाना का उद्देश्य है, न कोई दूसरा उद्देश्य है, कोई उद्देश्य नहीं है, एक ही उद्देश्य है, जब तब यथार्थता आ जाएगी, वरना भूलने का हजार ठिकाना है, मुमुक्षु की भूमिका में भूलने का हजार ठिकाना है। तो ये एक मुख्य बात है कि जिसको सही रूप में आए बिना मुमुक्षुता का विकास नहीं होता और उस विकास आगे जा करके जो ज्ञान दशा में परिणमित होता है वो परिस्थिति नहीं आने वाली। सत्पुरुष जात्यांतरपना तो सम्यक दर्शन से लिया है, कृपालु देव ने जो बात लिया है वो सम्यक दर्शन से लिया है कि सम्यक दर्शन को संबोधित किया है बहुमान से कि हे कल्याण मूर्ति सम्यक दर्शन, ऐसा करके संबोधन किया है, तेरे प्रताप से जो मते श्रुत ज्ञान अब तक भव भ्रमण का जन्म मरण का हेतु रूप होता था, वही मति श्रुत ज्ञान, मति श्रुति है, अभी कोई आगे का ज्ञान प्रकट नहीं, वही मति श्रुत ज्ञान जात्यांतर हो गया है, तो मति श्रुति मति श्रुत, लेकिन जात्यांतर हो करके भाव निवृत्ति रूप परिणम में लगा, ये तेरे प्रताप से हुआ है, इसलिए हे सम्यक दर्शन मैं तुझे नमस्कार करता हूँ। सम्यक दृष्टि को तो नमस्कार किया, लेकिन सम्यक दर्शन को अलग छांट करके भी नमस्कार कर दिया। तो सम्यक दर्शन को ना देते ना, तो सम्यक दृष्टि दूसरी बात, सम्यक दर्शन दूसरी बात, ऐसा भी चलता है, आगरा में चला रात्रि चर्चा में, ऐसा नहीं है। हाँ हाँ, सम्यक दर्शन को भी नमस्कार किया है, सम्यक दृष्टि को भी सम्यक दृष्टि को तो बहुत नमस्कार किया है। देशता जैनी दशा वर्ते देहाती, जो ज्ञानी देहातीत दशा में आए, देहातीत दशा वाले को मैं कितना वंदन करता हूँ कि अगणित वंदन करता हूँ, एक बार दो बार ऐसी गिनती वाला नहीं करता हूँ, जिसकी गिनती नहीं हो गई इतना अगणित करता हूँ, ऐसा करके ले लिया। आत्मसिद्धि अंतिम पद है वो। जी मुख्य रूप से मुनिराज लेते हैं, मुख्य रूप से मुनिराज लेते हैं और गौण रूप से सत्पुरुष को इसलिए लेते हैं कि ये जमाना जो है जिसमें हमारी विद्यमानता है इसमें तो हमें तिरने के लिए एक ही साधन रहा है। सजीवन मूर्ति तीन होती है मोक्ष मार्ग में, एक सत्पुरुष, एक निर्ग्रंथ गुरु और एक आप्त पुरुष अरिहंत देव। ये तीन सजीवन मूर्ति है। ज्ञान की ज्योति से दूसरी ज्ञान की ज्योति प्रकट होने में, प्रकट ज्ञान की ज्योति तीन जगह है सजीवन रूप में, तो दो का अभी सद्भाव नहीं है। केवलियों का तो बात जमाना ही खत्म हो गया, 2500 साल हो गई करीब करीब। अब बात रही निग्रंथ गुरु की, लेकिन तोड़न जी साहब लिखते हैं आज से करीब 175 साल तो हो गए इनके मोक्षमार्ग प्रकाशक को लिखा लिखने को, कि पिछले 5-6 सैकड़ों से मैंने 500-600 वर्ष से ये जो हमारा ये मुनियों का संप्रदाय दिखने में नहीं आ रहा है, तो मुनि नहीं है तो क्रमशः निम्न कोटि का चल रहा है, तो ये भी परिस्थिति वर्तमान में नहीं दिखती। अब तिरने के लिए एक रही। अच्छा, जब तीन निमित्त है तो निमित्तत्व की कमी बेसी नहीं है, उपादान की कमी बेसी है। हमने जो चर्चा की कि भगवान है, पूर्ण है, निग्रंथ गुरु है, वो इससे कुछ कम है और सत्पुरुष तो जघन्य दशा वाले मोक्ष मार्गी हैं, लेकिन निमित्तत्व के हिसाब से हमारा जो दृष्टिकोण है, देखने का एंगल है, वो है कि हमें फायदे होने में तीन प्रकार है कि नहीं। हमारे फायदे होने में तो एक ही प्रकार है, निमित्तत्व तो पूरा का पूरा तीनों में एक सा है। हमको ज्ञान प्रकट करने में चाहे मुनिराज हो, चाहे भगवान हो, चाहे सत्पुरुष हो, हमको तो ज्ञान एक किसी एक से भी हो सकता है। और ये सुगा ने जी का दृष्टांतल में बोलते रह गया अपने भाषण में कि गुरुदेव के में के भावों में मैंने गुरुदेव के सम्यक ज्ञान में और गुरुदेव की वाणी में कितना सामर्थ, इसका एक उत्कृष्ट दृष्टांत कोई है तो ये सुगानी जी है कि इसकी वाणी और इसके भाव के स्पर्श से ही ज्ञान दशा प्रकट कर ली। तो ये निमित्तत्व कितना पावरफुल था गुरुदेव का, इसका उपादान को अभी नहीं देखे हम सुगानी जी के, उपादान को गौण रखे, पर हमको गुरुदेव की महिमा करनी है। चलो, तो गुरुदेव की महिमा ऐसे हो सकती है कि देखिए इनके ज्ञान में और वाणी में कितना जबरदस्त निमित्तत्व है कि किसी एक उत्कृष्ट पात्र जीव को एक पहले बंदूक के भड़ाके में संसार खत्म हो जाता है, इसकी संसार की मौत हो जाती है, एक गोली छूटी संसार की मौत, पहली गोली से नाश हो जाए। ऐसा जबरदस्त निमित्तत्व गुरुदेव की वाणी में था और गुरुदेव के ज्ञान में था। तो फायदा होने वाले को अधूरा हुआ कि पूरा हुआ? अगर इस जगह अरिहंत भगवान होते तो यही होने वाला था, पहले उपशम सम्यक दर्शन ही होने वाला था। इस जगह निग्रंथ गुरु होते तो भाई यही होने वाला था, और इस जगह गुरुदेव था तो यही हुआ। फायदा होने वाले को तो 100% लाभ हुआ है, 200% 99.9 नहीं हुआ है, पूरा का पूरा हुआ है। इसलिए उनको तो भगवान बोल दिया, इसलिए बोल दिया कि हमारे लिए तो भगवान है, क्या भगवान से भी अधिक है? भगवान तो बहुत मिले थे, फायदा हमें नहीं हुआ था, ये भगवान मिले तीर्थंकर से भी अधिक हमको फायदा हो गया, इसलिए ऐसा भक्ति किया है हमने। क्या कहते हैं कि सत्पुरुष के वचन के यथार्थ ग्रहण के बिना प्रायः विचार का उद्भव नहीं होता, और सत्पुरुष के वचन का यथार्थ ग्रहण तभी होता है, ग्रहण नहीं यथार्थ ग्रहण तभी होता है कि जब सत्पुरुष की अनन्य आश्रय भक्ति परिणत होती है तब देखिए। अभी तो परंपरा लेते हैं कि पहले तो वैराग उपशम पूर्वक विचार चलना है और विचार का उद्भव सत्पुरुष के वचन का यथार्थ ग्रहण पूर्वक, और सत्पुरुष के वचन का यथार्थ ग्रहण कैसे कि उसकी अनन्य आश्रय भक्ति पूर्वक। देखिए भक्ति नहीं लिया, आश्रय भक्ति नहीं लिया, अनन्य आश्रय भक्तियां अवतरण चिन्ह में वो बात खुद ने लिखी है, एक एक बात खुद के लिखे, अवतरण चिन्ह भी खुद का किया हुआ है। भाषा के तो बहुत मास्टर थे वो, मास्टर क्या कहे, जायंट थे वो अपनी भाषा के लिए, तो वो जायंट थे। तो ये क्या बात लिखी कि सत्पुरुष का विरोध तो नहीं होना, निषेध तो नहीं होना, भक्ति तो होना, लेकिन भक्ति अधूरी नहीं होना, भक्ति भी ओग संगना नहीं होना, आश्रय भक्ति होना। आश्रय भक्ति मतलब क्या, इसके चरण में मेरा निवास हो। पर अभी तो है नहीं, वो तो स्वर्ग में चले गए, स्वर्ग में चले गए तो अगर मिले तो मुझे कोई ऐसा मिले, ऐसा आश्रय भक्ति किसको कहते हैं, भावना आवे उसकी, नहीं होवे तो भावना मिट जावे उसको भावना नहीं कहते, नहीं होवे तो भावना तीव्र हो जावे उसको भावना कहने में आती है। यही भावना का स्वरूप है। वियोग में भावना बढ़ती है जैसे सच्चा प्रेम बढ़ता है, झूठा प्रेम होवे तो संयोग में दिखावा देता है, वियोग में भूल जाता है आदमी क्यों कभी मिले थे या नहीं मिले थे। लेकिन सच्चा प्रेम होता है तो वियोग में और बढ़ जाता है, संयोग में इससे ज्यादा बढ़ जाता है, और वियोग में फिर इससे ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे भक्ति का भी यही स्वरूप है कि विद्यमान सत्पुरुष होवे तो अनन्य आश्रय भक्ति होवे ही, और नहीं होवे तो भावना और तीव्र हो जावे, डबल हो जावे, उसी को उसकी आश्रय भक्ति की भावना कहने में आती है, उसको आश्रय भावना कहते हैं। कैसे समन्वय कैसे करना, ठीक है, नहीं ये अविनाभावी है। जिसको स्वरूप की रुचि है, जिसको स्वरूप प्राप्ति की भावना है, जिसको तत्व निर्णय करना है, उसको ऐसे मार्ग के दर्शाने वाले प्रति अनन्य आश्रय भक्ति अनिवार्य है, निवारण नहीं हो सकता। ऐसी बात है, आश्रव भाव है, ये है, वो जानते हैं, फिर भी मुमुक्षु दशा में थोड़ा पक्ष रहता है। अभी पक्ष निकला नहीं ना, तो पक्ष तो कहीं रहेगा, पक्षांतिक्रांत तो हुआ नहीं, तो पक्ष तो कहीं भी रहेगा कि नहीं रहेगा, तो इधर इस जगह पक्ष रहेगा इसका, ये बात है। जानते हैं कि इसको भी छोड़ करके हम आगे वितरागता में जाएंगे, लेकिन अभी हमारी परिस्थिति ये नहीं है, तो अनिवार्य रूप से आती है। इसमें क्या बात है कि एक आदमी को समझो कैंसर हुआ है, उसको पहला विचार कौन आएगा, फर्स्ट थॉट जिसको कहते हैं अपन, पहला विचार कौन सा आएगा बताइए आप। एक आदमी को यहाँ रात को कुछ नहीं था, सुबह उठा और देखा कि इधर तो इतना बड़ा ये हो गया है, पर जब ओवरनाइट हो जाता है तो कैंसर ही होता है, क्योंकि उसका डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है और वेदना भी उसकी बहुत तीव्र होती है, तो बायोप्सी किए बिना ही उसको पता चल जाता है कि गड़बड़ हो गई। अच्छा, पहला विचार कौन सा आएगा बताइए आप। एक मरण का प्रसंग है ये, मिथ्यात्व का कैंसर तो अनंत मरण का प्रसंग है, ये तो एक ही मरण का प्रसंग है, पहला विचार कौन सा आएगा, ग्रंथ का नहीं आएगा क्यों? अब मेरा प्रश्न है, भाई ने उत्तर दिया कि डॉक्टर के पास जाने का विचार आएगा पहला, तो हम पूछते हैं कि कैंसर के ग्रंथ बहुत आजकल तो बड़ी सब भाषा में लिखे हुए हैं, आयुर्वेद वाले ने भी लिखा, एलोपैथी वाले ने भी लिखा, होम्योपैथी वाले ने भी लिखा, तो ग्रंथ पढ़ने को नहीं बैठेगा क्या? ग्रंथ तो उपलब्ध है, डॉक्टर इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं है जितनी आसानी से ग्रंथ उपलब्ध है हर जगह है। कि ग्रंथ पढ़ने में क्या उल्टा सुलटा वो नहीं पढ़ सकता, क्या देर सवेर नहीं होती और उसमें ये रोग डेवलप नहीं हो जाएगा है? तो पहला विचार ये सही विचार है कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब कौन सा डॉक्टर के पास? डॉक्टर भी हजारों बैठे हैं, हैं? एक शहर में हजारों डॉक्टर बैठे हैं, हम किस डॉक्टर के पास जाएंगे? कि कैंसर के निष्णात, कैंसर में भी कैंसर वाले भी बहुत हैं, इसमें सबसे एक्सपर्ट कौन है, किसका नाम बड़ा है, इसके पास जाएंगे। इसका सही अर्थ है कि हमें दर्द मिटाना ही मिटाना है, तो ये पहला विचार आएगा, आश्रय भक्ति का पहला विचार आएगा। क्योंकि मुमुक्षु को ये पता है कि सत्पुरुष तो कुछ लेते नहीं, सत्पुरुष तो कुछ लेते नहीं, वकील होवे तो घंटा भर का 1,000, 2,000, 5,000 ले लेते, पालखे वाला होता तो 10,000 ले लेते, एक घंटा का मेरा तो 20,000 का चार्ज है, लेकिन ये तो कुछ लेते नहीं, इसलिए उनको बहुमान और बढ़ता है। सत्पुरुष की निष्प्रता को देख करके उसको उतना बहुमान आता है, उतना बहुमान आता है, उसी का नाम आश्रय भक्ति है। वो आश्रय भक्ति के समेत अगर सत्पुरुष के चरण में जाता है तो उसके वचन का यथार्थ ग्रहण होता है। तो आश्रय भक्ति का मूल कहाँ है? कि मुझे ये भवरोग मिटाना ही है, मुझे मेरा पूर्ण शुद्धि करनी ही है, आत्म कल्याण परिभ्रमण मिटाना ही है। इसके मूल में से ही भाग हुआ कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है। कौन आत्मज्ञानी है इस विश्व में? कौन आत्मज्ञानी है? अगर पाताल में हो तो भी मुझे ये औषध लेने को जाना है, ऐसा अभिप्राय आएगा कि आकाश पाताल एक कर लूंगा मैं, क्या अभिप्राय होता है उसको, ऐसे जीव को, कि मैं आकाश पाताल एक करके ढूंढ लूंगा, कहीं भी कोने में पड़ा हो ज्ञानी उसको मैं पकड़ूंगा, उसके चरण में जाऊंगा और मेरा अनंत काल का जो अनंत जन्म मरण है वो मुझे मिटाना ही है। ऐसा जब तैयारी होती है तब ही सत्पुरुष के वचन की यथार्थ ग्रहण की परिस्थिति उपादान में आती है। हमें सत्पुरुष मिले, सत्पुरुष के वचन मिले, लेकिन उसकी यथार्थ ग्रहणता क्यों नहीं हुई? यही कारण है कि हमने अनन्य आश्रय भक्ति नहीं किया। भक्ति किया तो ओग भक्ति से किया, भक्ति किया तो हमने तोल माप से किया कि ये तो सत्पुरुष है, सदगुरु नहीं है, निग्रंथ गुरु नहीं है, या ये परम गुरु अरिहंत देव नहीं है, इसलिए थोड़ा बैलेंस रख ले वे इसके लिए क्या करें, थोड़े अपने पास बैलेंस में रख ले वे, उसका उपयोग गुरु मिलेंगे जब करेंगे, अब तो सत्पुरुष की तो मर्यादा में कर ले वे, तो उसको अर्घ चढ़ाएंगे, उसको अर्घ इसके लिए बाकी रख ले वे, अर्घ इसको लिए, अर्घ नहीं अर्घ इसको लिए, ये अनन्य भक्ति उसको नहीं कहने में जाती, नहीं कहने में आती। अनन्य भक्ति क्या चीज है? जिसका अन्यपना नहीं होवे उसको अनन्य कहते हैं, जिसका दूसरा विकल्प नहीं होवे, जिसकी बराबरी नहीं होवे, जिसके समर्पण में कोई बात की कमी नहीं होवे, सर्वस्व, सर्वस्व के जो देने वाले हैं उसके प्रति सर्वस्व अर्पणता आए बिना रहेगी नहीं, वो 609 में लिखा है उन्होंने, सर्वार्पण बुद्धि से, क्या लिखा है 609 में? मुमुक्षु को सर्वार्पण बुद्धि से सत्पुरुष के चरण में जाने का भाव आता है। विरोध का सवाल नहीं, निषेध का सवाल नहीं, अधूरास का भी सवाल नहीं। इसके बिना यथार्थ ग्रहण नहीं होगा। इसका वचन मिलेगा, वचन मिलना पुण्य योग है। ये पुण्य योग की एक नोट है हमारे पास। इस नोट को से हमें माल खरीदना या इस नोट को जला दे करके राख ले लेना, रक्षा जिसको कहते हैं, क्या करना, ये हमारा विवेक पर आधारित है। अगर हमको सत्पुरुष मिले, हमने सदुपयोग नहीं किया, तो ये नोट जल गई, उसकी राख रहेगी। और हमने यथार्थ पूर्ण रूपेण सर्वार्पण करके इसके वचन को ग्रहण किया, तो माल ये मिलेगा कि अमृत मिलेगा। इसमें से क्या मिलेगा? अमृत मिलेगा, जो अमृत मरण को मारेगा। मृत मृत मैंने मरना, ऐ मृत मैंने नहीं मरना, मृत्यु को खत्म करेगा, उसको अमृत कहते हैं। ऐसा अमृत मिल सकता है, वो एक ही जगह है। क्योंकि अनन्य आश्रय भक्ति परिणत होती है, क्योंकि सत्पुरुष की प्रतीति ही कल्याण होने में सर्वोत्तम निमित्त है। प्रतीति मैंने पहचान पूर्वक विश्वास होना, उसको प्रतीति कहते हैं। खात्री, प्रतीति हमने गुजराती में खात्री कहिए छे, मने खात्री छे कि आ तो ज्ञानी छे, आ तो अहींथी मने मारो कल्याण થવાનું જ છે, મારા કલ્યાણના નિમિત્તભૂત છે એની ખાતરી થઈ જાય છે। તો એસી અનન્ય ભક્તિ કે વિના સત્પુરુષ કી પ્રતીતિ હી, ક્યોંકિ સત્પુરુષ કી પ્રતીતિ હી કલ્યાણ હોને મે સર્વોત્તમ નિમિત્ત। સાધારણ ડોક્ટર ભી એસા બોલતા હૈ કે મેરી દવા મે વિશ્વાસ રખના, ક્યા કહેતેગા? તો વિશ્વાસ, બિના વિશ્વાસ તું ગોલી ખાયેગા તો તુજે યે દવાઈ કી અસર, દવાઈ કા પ્રભાવ નહીં હોગા, એસા કહેગા। ये तो सत्पुरुष है, कल्याण होने में सर्वोत्तम निमित्त है। प्राय ये कारण परस्पर अन्यो अन्य आश्रय जैसे हैं। मैंने अनन्य भक्ति से ग्रहण यथार्थ होता है, यथार्थ ग्रहण करने की भावना से अनन्य भक्ति उत्पन्न हो जाती है, ऐसे अन्य अन्य आश्रय होते हैं। कहीं किसी की मुख्यता है, कहीं विचार की मुख्यता है ग्रहण करने की, कहीं भक्ति की, कहीं किसी की मुख्यता है दो में। तथापि ऐसा तो अनुभव में आता है, अब कहते हैं तथापि ऐसा भी हमको तो अनुभव में आता है, या ये हमारा अनुभव है कि जो सच्चा मुमुक्षु हो, मुमुक्षु नहीं लिखा अभी, जो सच्चा मुमुक्षु हो, इसका मतलब खोटे भी बहुत होते हैं, लेकिन अब सच्च की बात चल रही है कि जो सच्चा मुमुक्षु हो उसे सत्पुरुष की आश्रय भक्ति अहम भाव आदि के छेदने के लिए और अल्पकाल में विचार दशा परिणमित होने के लिए उत्कृष्ट कारण रूप होती है। देखिए, सत्पुरुष के वचन से विचार का उद्भव हुआ, अब कहते हैं कि विचार दशा परिणमित होने के लिए, उसका परिणमन हो जाना। बात तो मिली लेकिन परिणमन नहीं हुआ, ये तो समस्या है ना। तो इसका परिणमन करने में अनन्य भक्ति है, ये आश्रय भक्ति है, ये मुख्य साधन है, उत्कृष्ट कारण है, और उसमें दूसरे अहम भाव आदि प्रकार नहीं हो गए। ये अहम भाव है, एक बहुत छुपा छिपा दुश्मन है। जीव इस मनुष्य पर्याय में अहम भाव से बचे तो एक कोई असाधारण अच्छे होनहार वाले कोई ऐसा हो सकता है, वरना कुछ भी करेगा। सदगुरु के चरण में जाएगा तो ऐसे इसका अहम भाव करेगा कि मैं तो सोनगढ़ जाता हूँ, मैं तो सोनगढ़ जाने वाला हूँ, मैं तो बहुत वहां रहता हूँ, मैं तो बहुत गया वहां, शास्त्र पढ़ लिया मैंने बहुत जाना है, मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ, जो भी धार्मिक प्रक्रिया करेगा उसका अहम भाव आए बिना रहना मुश्किल है। पर्याय दृष्टि है ना, तो पर्याय में तो कार्य होता है, अहम भाव स्वयं हो जाता है। तो सम्यक दर्शन में होने से ये अहम भाव पर्याय दृष्टि चली जाने से नहीं होता, तो इसके पहले क्या करें कि ये अहम भाव छेदने के लिए सतपुरुष की आश्रय भक्ति सबसे बड़ा साधन है, उत्कृष्ट साधन है। हमें कुछ नहीं देखना है, सतपुरुष का चरण हमें मिल गया तो हमें कुछ देखना नहीं है, आगे कौन है पीछे कौन है, कौन क्या करता है, क्या फायदा करता है, क्या नुकसान करता है, करो जिसको जो करना है वो करो, हमें सतपुरुष कहाँ से मिले, बस ऐसे जो आ जाए तो उनको ये जो भी विचार मिले हैं, जो भी वचन मिले हैं, उसका परिणमन होने में ये उत्कृष्ट साधन है। ये कृपालु देव के स्वयं का अनुभव बोलता है। क्या लिखा है, तथापि ऐसा तो अनुभव में आता है, आया है और आता भी है कि जो सच्चा मुमुक्षु हो उसे सत्पुरुष की आश्रय भक्ति अहंभाव आदि के छेदने के लिए और अल्पकाल में विचार दशा परिणमित होने के लिए उत्कृष्ट कारण रूप होती है। कल तो यहाँ तक पढ़ा था, आज भी समय निकल गया यहाँ तक पढ़ने में, और दो चार मिनट तो हैं। अब कहते हैं कि मुमुक्षु को एक और प्रश्न भी केशवलाल भाई ने उठाया है कि एक तो मुझे संयम परिणाम, संयमित परिणाम के काल में अहम बुद्धि अभिमान हो जाता है, दूसरा मेरी तृष्णा जो है वो बहुत चलती है, तृष्णा को मैं तृष्णा के प्रवाह में मैं बहुत जाता हूँ। कहने का अभिप्राय ये है कि मेरी कुछ लोभी प्रकृति है, प्रकृतिगत में लोभी मनुष्य हूँ और तृष्णा के परिणाम बहुत तीव्र रस से मेरे में पैदा होते हैं। मैं क्या करूं इसके लिए, जैसे कोई भीख मांगते हैं ऐसे सतपुरुष के पास ये इलाज के लिए उसने याचना की है, ऐसी बात है। तो उसके दो तीन बातें बहुत सुंदर बताई है इस पैराग्राफ में कि एक तो भोग में अनासक्ति हो, तृष्णा से क्या करेंगे, पैसा मिलेगा भोग उपभोग में तीव्र रस से परिणमित होगा, आशय तो पहले से ये होगा कि पैसा मिलेगा तो ये खरीद करेंगे, वो लेंगे, वो सब साधन जुटाएंगे। भोग में अनासक्ति हो, मुझे चलेगा जैसे कैसे भी चल सकता है, कोई विशेष अनुकूलता की मुझे कोई आवश्यकता या जरूरत नहीं है, दो टाइम रोटी मिल गया बाद खत्म, दो टाइम सुखी सुखी भी रोटी मिल गया बाद खत्म, किराया दे दिया, ये शरीर रूपी मकान मालिक को किराया दे दिया, चलो बात खत्म, अपने तो अपना काम करना है। तो भोग में अनासक्ति हो, लौकिक विशेषता दिखाने की बुद्धि कम की जाए, ऐसे वालों को यही एक भाव रहता है कि मेरी विशेषता दिखे, मेरे पास मकान है, मेरे पास ऐसे कपड़े हैं, मेरे पास ऐसे जूते हैं, मेरे पास ऐसी गाड़ी है, मेरे पास वो है। इतने अभी तो नखरे हैं, बात छोड़ दो, साधन प्रसाधन, प्रसाधन के भी प्रसाधन, ये सब जो है ये लौकिक विशेषता दिखाने की छोटी मोटी बात में लौकिक विशेषता दिखे, एक कपड़े की क्रीज हो ना उसमें भी उसको विशेषता दिखाने के बाद आता है, मेरे कपड़े ऐसे नहीं है, रोजाना बिल्कुल टाइट एंड टाइट होना, यहाँ से लेकर के जो लौकिक विशेषता दिखाने की बुद्धि है उसकी तृष्णा कभी ही कम होने वाली नहीं है, भरी पड़ी है। पहले लौकिक विशेषता दिखाने का कम कर दो, तृष्णा आएगी नहीं, लेकिन तृष्णा कम करनी है लेकिन लौकिक विशेषता दिखानी है, ये तृष्णा जाने वाली नहीं है, भीतर में बराबर छिपी हुई पड़ी है वो आगे जाकर के बढ़ जाएगी। भोगा शक्ति है ना, भोग में अनासक्ति हो, लौकिक विशेषता दिखाने की बुद्धि कम हो, तभी ऐसा किया जाए तो तृष्णा निर्बल हो जाती है। नाश तो नहीं होगी लेकिन उसकी जो शक्ति है, अनुभाग है, वो टूटेगा। पहले तो उसका अनुभाग को तोड़ो, जो भी दर्शन मोह है, चारित्र मोह है, जो भी जैसे भी विकार के परिणाम हो, उनके पहले अनुभाग को तोड़ना है। उसकी शक्ति को तोड़े बिना वो निर्बल नहीं होंगे, और जहाँ तक निर्बल नहीं होंगे अभाव के लायक भी होंगे नहीं। तो अभाव करने के लिए, अभाव के लायक बनाने में ये सब जो मुमुक्षु की भूमिका है उसमें ये प्रोसेस चलता है। और ये प्रोसेस किस किस तरह, किस किस कषाई में कैसे कैसे चलते हैं, वो एक एक बात को उठा के लिया। अभी कृष्ण का बात लिया, पहला अहम भाव का बात लिया, अभी कृष्णा का लिया। ये लोभ और मान मनुष्य पर्याय में दो मारते हैं, परिभ्रमण कराते हैं, जन्म मरण कराते हैं। दोनों की बात अच्छे लिया आगे।